وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ, और अगर हम चाहें तो हम गर्क कर दें, फला सरीख लहुम, और कोई चीख भी ना हो और कोई मददगार ना हो उनके लिए, और ना ही वला और ना ही हुम युंकदून वो बचाए जा सके। अगर अल्लाह ताला चाहे ना तो इन्हीं बहरी जहाजों में बैठे हुए या हवाई जहाज में आप देख लें, अल्लाह ताला आज के दौर के अंदर तो चूंकि हम हवाई जहाज में ज्यादा सफर करते हैं इसलिए उसके ऊपर आप कयास कर लें, लेकिन बहरी जहाज का है कि अगर गर्क कर दे तो कोई फरियाद रसी करने वाला भी ना हो। फाइल के वजन पे ना फरियाद रसी सरीख, फरियाद चीखो पुकार करना, चीखना, हाल दुहाई मचा देना कि गर्क होने लगे तो इंसान चीखता है ना, तो कोई भी उसकी सुनने वाला भी ना हो। आप देख लें टाइटैनिक का अंजाम क्या हुआ था, जब उन्होंने कह दिया कि इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, तो इसका मतलब इतना उनको जोन था ना इस बात पे कि हमने तो ऐसा शाहकार बनाया ना कि खुदा भी उसको डुबो नहीं सकता, जब इतना बड़ा चैलेंज कर दिया अपनी पहली सफर में वो डूब गया, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, उनका बचाने वाला कोई नहीं था। इसी तरह आप आज भी देखते हैं अल्लाह ताला रहम फरमाए और हादसात से महफूज रखे, लेकिन जहाज हवाई जहाज कई दफा गिर जाते हैं, कोई छोटी सी उनके अंदर वो होती है तो किस तरह बास दफा वीडियोज आ जाती हैं कि लोग चीखे मार रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता। हवा में गिर गए तो चाहे समुंदर में जाके गिर जाए चाहे जमीन पे गिर जाए, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होता। कभी आपने देखा है कि कोई गिर रहे थे और उनको बचा लिया गया? तो इससे अल्लाह ताला दिखाता है कि उसकी पावर कितनी है। अगर यानी आज तुम्हारा ये सारा निजाम चल रहा है ना, तो वो उस रब की मरहूने मिन्नत है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी रहमत है कि ये सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलता रहता है। कितने जहाज अगर आप एयर ट्रैफिक देखें रात को बाज दफा देखते हैं ना, तो कितनी जगह पे यानी इस तरह से चमक रही होती है लाइट के, पता चलता है यहाँ पे भी जहाज, और एयरपोर्ट के करीब तो कितनी ही लाइटें नजर आती, हर मिनट के ऊपर जहाज उतर रहा है, कितनी एयर ट्रैफिक है, कई 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 दफा उनको इंतजार करना पड़ता है कि इतनी ज्यादा मतलब उनकी बारी बारी नहीं आती उतरने की। इस सारे निजाम को चलाने वाला और चलने देने वाला कौन है कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जबकि इंसान नाफरमानी है, करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं। इल्ला रहमत मिन्ना, हम चाहें तो तुम्हें गर्क कर दे, तुम्हें कोई बचा ना सके, तुम्हें कोई तुम्हारी कोई फरियाद रसी ना कर दे, मगर अल्लाह की रहमत है। व मतान इलाहीन, और एक फायदा एक वक्त मुकर्रर था, ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि वो चलने देता है, और मोहलत का एक उसने तुम्हारे लिए वक्त रखा है, एक मोहलत रखी है तुम्हारे लिए, एक एक टाइम तुम्हें दिया है, एक तुम्हारे लिए एक एक पीरियड रखा है ताकि तुम्हें अमल अमल कर सको। अल्लाह अकबर, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी रहमत है, वरना तो देखे ना टोर्नेडो आ जाए तब इंसान मुश्किल में, हरिकेन आ जाए तब इंसान मुश्किल में, कोई और तूफान आ जाए, जहाज उड़े गिर जाए तो क्या इंसान कर सकता है, समुद्र में बहरी जहाज जाए और डूब जाए तो ये सारी आपकी दुनिया की इकोनॉमी बैठ जाए, चल नहीं सकती है। अब कोविड में जरा स्लो हुआ तो कितना हमें चीजों का प्रॉब्लम होने लगा कि चीजें नहीं मिल रही, क्योंकि तो जहाजों पे लोड और अनलोड करने के लिए मुश्किल हो रही थी, हालांकि जहाज चल रहे थे तब भी। तो अब अंदाजा कीजिए कि ये अगर चल ही ना सके तो क्या हो, तो दुनिया की इकोनॉमी इसके ऊपर चलती है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है, याद रखें। इंसान का जी हम ही करते हैं हमसे ये चल रहा है, नहीं, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये अल्लाह है रहमत मिन्ना, ये हमारी तरफ से रहमत है, और ना हरिकेन आ जाए ना तो देखो कश्तियां कैसे डूब जाती हैं समुंदर में, तूफान जब आते हैं अल्लाह चाहे तो सारी ही डूब जाए। तो अगर अल्लाह ताला की रहमत ना हो, इसका मतलब अल्लाह ताला की रहमत कि हमेशा दुआ ही करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत को हमेशा मांगते रहना चाहिए। और कभी इस खुशफहमी में ना पड़े कि जी हम ही कर रहे हैं, हमारा ही कमाल है, हमारी ही मेहनत का नतीजा है, इंसान की कोई भी मेहनत नहीं, वरना टाइटैनिक ना डूबता, बड़े ब्रेन्स थे उसके पीछे भी। इंसान की सारी मेहनत, सारे कोशे धरी की धरी रह जाती जब जहाज गिर जाते। आज आप अस्पतालों में जाके देखें, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन सब कुछ है, फिर भी लोग मर जाते हैं, फिर भी सेहत नहीं होती। इसे पता चलता ना, इंसान मजबूर है और वो बेबस है अल्लाह ताला के आगे। कोई उसका अपना कमाल नहीं है, जो कुछ उसको मिला हुआ है वो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। तो मता अनिला, इन्हें अल्लाह ताला की रहमत है, और अल्लाह ताला ये चाहता है कि मैं इनको एक टाइम दे दूं, ताकि इस टाइम के दौरान सब वो पकड़ने लगता या तबाही करने लगता तो कोई भी ना बचता यहाँ पे। वो कितने भी शुक्र गुजार होना चाहिए कि अल्लाह तो शुक्र है, और किस तरह अल्लाह ताला की रहमत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत चाहिए ना हर चीज के लिए। इवन आप किसी ट्रांसपोर्ट, ये तो बहरी और बरी वो हवाई जहाजों की बात की है मैंने, लेकिन आप गाड़ियों में रोजाना सफर करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह महफूज पहुंच जाते हैं, क्या ये अल्लाह की रहमत नहीं? अल्लाह ताला फरमाता है अगर उनको गर्क कर दे, उस वक्त तो सिर्फ बहरी जहाज थे ना, आज गाड़ी है, अल्लाह ताला गाड़ी को वहां पे ना पहुंचाए, हजारों आप एक्सीडेंट रोजाना सुनते हैं, तो कोई बचा ना सके। अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई इंसान तो घर से सारे निकलते हैं यही सोच के कि हमने पहुंच जाना दूसरी जगह, लेकिन कितने ही होते हैं अस्पताल पहुंच जाते हैं, कितने ही होते हैं कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तो ये रहमत है ना अल्लाह की, और ये भी कि वो बचा लेता है क्योंकि उसने मतान इलाहीन फरमाया। तो बचने वाले भी बहुत इस चीज को ना समझे कि हम जी बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं, हम जी बहुत इसमें एक्सपर्ट हैं, वो बचाता है तो तुम बचते हो। वाइजा कीला लहुम तक्कू, और जब कहा जाता है उनसे डरो, मा बैना अईदी की व मा खल्फकुम, जो तुम्हारे सामने और जो पीछे है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी अगर इंसान चाहता है कि उस के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, तो क्या किया जाए? तकवा। अभी अल्लाह ताला ने ना जो कायनात में तौहीद की निशानियां थी उनका जिक्र करके, और अब फरमाया जो फिर भी ना माने उनसे कहा जा रहा है तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या चीज है? क्या चीज है? आज तक आपने इतनी दफा, आप तो तकवा का पढ़ लिया, इतनी दफा इसको समझ लिया, अब बताइए, आप बताएं कि तकवा क्या चीज होती है, क्या करना होता है? और सिर्फ ये ना कहें अल्लाह का डर, ये तो एक कोई भी ऐसे बता देगा, आप डिटेल में बताएं, अगर आपसे पूछा जाए तकवा क्या चीज होती है, अल्लाह ताला का डर तो है मगर यानी गुनाह से बचना, अब इसको समझ लें, गुनाह से बचना, चाहे वो गुनाह सब कर रहे हैं और चाहे वो गुनाह उस माशरे में बुरा नहीं समझा जाता, मसलन आज एलजीबीटी है कोई बुरा ही नहीं समझ रहा, ये मैरिजेस हैं कोई बुरा नहीं समझ रहा, चाहे वो सब में एक्सेप्टेबल हो जाए। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, इसी तरह बेपर्द फिरना, उसको कोई बुरा नहीं समझता आज, तो चाहे उसको कोई भी ना बुरा समझे, चाहे कानून भी उसको लीगल कर दे, और चाहे खानदान वाले भी उसी को पसंद करते हैं, उसी गुनाह को, चाहे अपने दिल का मिलान भी उसकी तरफ हो, चाहे उस गुनाह को करने से वाह वाह भी मिलती हो, चाहे कोई बुराई मेरे ऊपर नहीं आती उस गुनाह को करने से, चाहे बजाहिर उसको करने में फायदा ही नजर आता हो, मगर एक चीज सिर्फ मुझे उस गुनाह से रोके हुए है, सिर्फ एक चीज, चाहे कोई ही मुझे देखने वाला भी ना हो, कोई मुझे पूछने वाला ना हो, मैं कर सकती हूं उसको, मेरे बस में भी है, कोई बुरा भी नहीं समझता, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई खानदान का डर भी नहीं है, मेरा मिलान भी उस तरफ है, दिल भी अंदर से करता है उसके लिए, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो मुझे रोकती है, वो मेरे रब की नाराजगी, उसका डर, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएगा। ये है तकवा, ये है तकवा। जिस दिन ये आया तब है, अल्लाह ताला फरमाता तुम पे रहम होगा अल्लाह की तरफ से, तब रहमतें बरसेंगी। समझ आई आप बात? क्योंकि तकवा तकवा करते रहो, उसके बाद जिंदगी में पता ही नहीं तकवा क्या है। आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ना पहनने में तकवा का पता, ना खाने पीने में तकवा का पता, ना मामलात करने में तकवा का पता। चाहे दूसरे को समझ भी नहीं आती, वो बेचारा भोला सा है, बेवकूफ सा है, उसको तो पता भी नहीं चलना, आप वो दाव उसके साथ दिखा सकते हैं, तब भी एक चीज है जो आपको रोकती है, वो अल्लाह का डर है, वो उसकी नाराजगी का डर है, वो नाराज हो जाएगा ना, नहीं उसको नहीं नाराज करना। अल्लाह हू अकबर, ये होता है तकवा। तो ये कितना हमें आज तक हमारे अंदर आया है, क्योंकि इसको रहम के साथ रिलेट किया गया है, लाल्ला को तुरहमून, तुम रहम चाहते हो ना, चाहते हो अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हारे पर बरसें, तुम्हारे घर पे बरसें, तकवा इख्तियार करो। अब समझ आ गई प्रैक्टिकली कैसे होता है, मैं बुक्स में इसे आपको बताती रहूं, इसकी डेफिनेशन शायद नहीं समझ आएगी, मैं आपको कहती रहूं कि जैसे कांटों के पास से आप अपने दामन बचा के चलते हैं, इस तरह आप चलते रहे, आप शायद आपको नहीं समझ आए प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन आप तो समझ आ गई है ना कि कौन सी चीज है जो रोकेगी। ये चीज नहीं रोकती कि हाँ सेहत के लिए ये बुरी चीज है, इस चीज की वजह से नहीं रुके वे, शराब सेहत के लिए बुरी है, ड्रग सेहत के लिए बुरे हैं, नहीं, अल्लाह का डर। बेईमानी करेंगे तो देखो पकड़े जाएंगे, कानून का डर नहीं, अल्लाह का डर, वो तकवा होता है। कानून के तकवे तो बहुत हैं हमारे पास, और लोगों के तकवे भी बहुत हैं हमारे पास, लोगों के डर, कानून के डर, खानदान के तकवे, अल्लाह का तकवा है कि उससे हम डर जाए, उसकी नाराजगी से हम बचें, उसकी नजरों में जचने की कोशिश करें, उसके प्यारे बनने की कोशिश में लगे हुए हों, ये तकवा। तो ये होगा तो तुम पर रहम किया जाएगा, तब एक्सपेक्ट करना। और आगे और पीछे का शऊर दिलाया गया, आगे और पीछे क्या है, क्या चीज है जो इंसान के आगे है और क्या चीज है जो इंसान के पीछे है। सामने दुनिया और पीछे आखरत, ये भी कह सकते हैं, या पीछे दुनिया रह गई और सामने आखरत, या दुनिया और आखरत भी ले सकते हैं, इंसान के अपने अमल भी ले सकते हैं, यानी जो उसने कर लिए वो गुना, और जो बुराइयां आगे कर सकता है वो, जो आइंदा हो सकते हैं वो, उनसे भी बचना, जो गुना पीछे किए माजी में उनके ऊपर तौबा, और जो आगे करने में आ सकते हैं, आइंदा हो सकते हैं, उनसे बचाओ, यह जो आगे और पीछे में हो सकता है, दुनिया और आखरत के मामले में भी तकवा, यानी दुनिया जिसमें आज जिंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर आखरत को याद रख के चलना। दुनिया तो जाहिर हो चुकी है ना, आखरत अभी पर्दे में है, पीछे है, उसका यकीन रखना, तो तब तुम पे अल्लाह ताला के रहम होगा। तो गुनाहों से बचना भी, उनको छोड़ देना जो पहले कर रहे थे इस डर की वजह से कि अल्लाह ताला नाराज ना हो जाए, तब अल्लाह की रहमत आएगी, यानी तकवा जो है ना वो अल्लाह की रहमत लाता है। और ये भी कि आगे और पीछे इस चीज का एहसास रखना, ये मेरे आगे भी और मेरे पीछे भी अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह है जो उसकी कुदरत, उसका इल्म, उसकी उसका देखना, उसका सुनना, सब इन सब ने मुझे घेरा हुआ है। तो मुजाहिद ने जो माना लिया, गुनाहों का लिया, कि गुनाहों में आगे और जो पीछे, जो पहले कर चुके और जो करने आगे, डरो इनसे कि क्या बनेगा। कतादा कहते हैं कि इसका माना ये है कि जो तबाही के वाकयात गुजर चुके हैं गुज़िश्ता उम्मतों में वो है, और खल्फा कुम के मतलब है कि आखरत में जो अजाब आने वाला है, डरो उससे। इब्ने अब्बास ने इससे मुराद दुनिया और आखरत ली है। ये दुनिया में अमल करो, दुनिया से धोखा ना खाओ, इस पे ही फरेबता ना हो जाओ। एक आखरत है जो आगे छुपी हुई है, उसका एहसास रखो। ठीक है, तो ये सब माने, सब तफसीरें बताई गई हैं। और सारे ही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं अल्लाह हमें रहमतें मिलें, या अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखना, लेकिन तकवा नहीं आएगा तो रहमत नहीं है। तकवा जरूरी है। वमा तातीहिम मिन आयत मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, कितनी ही इनके पास निशानियां आई, कोई निशानी ऐसी नहीं इनके रब की तरफ से वो आई हो, मगर इनका एक ही काम है, एक ही तरीका कार रहा है कि ये एराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, तवज्जो ही नहीं करते, समझते ही नहीं है, इनका ध्यान कहीं और है। सूरह यूसुफ में है ना, कितनी निशानियां आसमानों जमीन में ऐसी हैं जिन पे से ये गुजरते रहते, मगर मुंह मोड़ते। अब अपने आप को हम देखें रख के, क्या हम नहीं निशानियां देखते? कुरान ने हमें जब ये निशानियां दिखाई, तब हमें थोड़ा बहुत अब एहसास होने लगा, अब हम थोड़ा जागने लगे, अब थोड़ा गौर व फिक्र करने लगे। इससे पहले इसी दुनिया में रहते थे ना, कितनी दफा देखा था, कितनी दफा गौर व फिक्र किया था, कितनी दफा तवज्जो भी की थी। ये तो कुरान हमारी जिंदगी में ना आता तो हम तो भूले बैठे हुए थे। अल्लाह ताला का यही गिला है कि कोई निशानी ऐसी नहीं है जो इनके रब की तरफ से आई हो, मगर इन्होंने हर निशानी के ऊपर, इनका एक ही डगर है, एक ही तरीका कार है, बस नहीं समझना, नहीं सुनना, मुंह मोड़े रखना, रूगर्दानी करना। और आज हर तरफ एराज के रवैये, हर तरफ आप देखें, अपने आप पे भी गौर करें और अपने इर्द गिर्द भी देखें, सारा दिन में ये निशानियां हमारे सामने है ना, दिन है या रात है, कहीं किसी टाइम पे तो आप होंगे, सूरज निकला होगा या चांद निकला होगा, आप खा पी रहे होंगे, कोई कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे, कोई ग्रेन्स, कोई फ्रूट्स, कुछ खाते होंगे, पानी भी पीते हैं आप साफ सुथरा, कितना कुछ है। इसके अलावा भी निशानियां हमारे अपने जिस्म में है। असल में तो देखने वाली आंख हो ना, हर चीज एक निशानी है। हम जब से सुबह आंख खोलते हैं उस वक्त से रात तक कितनी निशानियों के ऊपर से हम गुजरते हैं, कितनी निशानियां हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय अल्लाह। हर एक हमें दावत दे रही है कि मेरे जरिए अल्लाह ताला को पहचानो, समझो कि वो रब कैसा होगा, किसी चीज की खूबसूरती, किसी चीज का एक्यूरेट होना, किसी चीज का ऑर्गेनाइज्ड होना, किसी चीज का साइज, किसी चीज का रंग, किसी चीज का जायका, वो किसी तरह से हमें दावत देता है, वो किसी तरह से दावत दे, वो सब दावत दे रहे हैं गौर व फिक्र, लेकिन बेरुखी का रवैया ऐसा है कि होश ही नहीं आता, इधर गेम्स में लगे हुए हैं, उधर कोई चीज देख रहे हैं, हम पता नहीं किधर ही गुम है, हमें अल्लाह ताला के साइंस नजर नहीं आते, कहीं और दुनिया में गुम रहते हैं। दौहीद के दलाइल हैं इनमें, अल्लाह ताला के इल्म के, उसकी कुदरत के, उसकी अजमत के दलाइल हैं। एक सांस लेने में भी इंसान के लिए कितनी बड़ी रब की निशानी है। वाइज़ा क़ीला लहुम अन्फिकू, और जब इनसे कहा जाता है खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, उसमें से जो रिस्क दिया तुमको अल्लाह ने, अल्लाह ने रिस्क दिया है, तुम्हारा अपना ये नहीं है, इसमें से जो किसी ने आपको दिया उसमें से ही खर्च करने को कहा है, आपका तो है ही नहीं। आपके पास मसलन कोई अपनी चीज रखवाता है और कहता है इसमें से, मैं फोन करके कहता है इसमें से इतना ना फलां को, इतने पैसे फलां को दे देना, आपका नहीं मैंने नहीं देने, तो कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अल्लाह ताला ने हमें ये सारा रिस्क दिया, ये हम सब मानते हैं। जब अल्लाह ताला फरमाता है तुम खर्च करो, जकात दो, सदकात दो, तो उस वक्त कहते हैं लो जी, रोजाना मांगने ही आ जाते, बस फंड रेजर ही करते रहते हैं, डोनेशन ही मांगते रहते, इतना हमें गुस्सा आता है। हालांकि दिया वहां में तो अल्लाह ने है, हमारा अपना तो है ही नहीं है। अनफिकू, उसमें से खर्च करो जो अल्लाह ने रिस्क दिया तुम। काल अल्लदीना कफरू लिल्लदीना आमनू, तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो ईमान वालों से कहते अनुतअइमु मन लौ यशाउल्लाहु अतअमहु, हम उसको खिलाएं, हम खिलाएं उनको जिनको अल्लाह चाहता तो खुद ना खिला देता। अल्लाह ताला ने चाहा होता तो इनको गरीब ही ना करता, अल्लाह ताला इनको दे देता, तो हम क्यों इनको दें भाई? अल्लाह ताला चाहता ही था ये गरीब रहें और भूखे रहें और इनके साथ ऐसे ही हो, इसीलिए अल्लाह ने इनको ऐसा रखा था, वरना अल्लाह ताला इनको खुद दे देता। यानी बहाने देखें जो शैतान सुझाता है। और खास तौर पे यहाँ पे खिलाने की बात आई है, वैसे तो आप खर्च अल्लाह के रास्ते में बहुत तरह से कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे खिलाने की बात। और ये भी आता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो खिलाते थे लोगों को तो मिस्कीनों वगैरह का, तो अबू जहल उनके पास जाकर कहता है ए अबू बकर, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला इन लोगों को खाने खिलाने पे कादिर नहीं? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ है। अबू जहल ने कहा फिर क्या वजह है कि आप इनको खिला रहे हैं, आप क्यों खिला रहे हैं? उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला ने एक कौम को तंगदस्ती में मुब्तला किया और एक कौम को खुशहाली में, और फकरा को सब्र करने का हुक्म दिया और जो अमीर है उनको हुक्म दिया कि वो दें। तब अबू जहल ने कहा अल्लाह की कसम ए अबू बकर, अगर तुम ये समझते हो ना तो तुम तो बड़ी खुली गुमराही में, अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला इनको खिलाने पे कादिर है और वो नहीं उनको खिला रहा फिर तुम खिला रहे, तो ये तो गुमराही है। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन मुबीन, ये उनका कहना है कि वो तुम तो फिर खुली गुमराही में। दूसरा ये भी मतलब हो सकता है कि जो ये काफिर कह रहे हैं ये तो खुली गुमराही में, दोनों मतलब है ना, कि एक तो उनकी बाकी कंटिन्यूएशन कि वो कह रहे हैं अगर अल्लाह चाहता तो इनको खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में क्योंकि तुम इनको खिला रहे हो, ये तो गुमराही है, तुम क्या ये काम करने में लग गए, अल्लाह इनको गरीब ही ना करता फिर, उनका पूरा जुमला उनका। दूसरा कि हम यहाँ पे वक्फ करें तो आगे अल्लाह ताला की तरफ से है कि ये लोग ये काफिर गुमराही में है कि ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो इनको खिला देता। देखिए इस तरह के बहाने इंसान करता रहता है। एक तो ये इंसान कहता है ना अगर अल्लाह चाहता तो मैं नेक हो जाती, अल्लाह ने ही नहीं चाहा ना, अगर वो चाहता तो मुझे नेक ना कर देता, बिल्कुल जैसे यहाँ पे, यानी कोई भी नेकी का काम है ना उसको तकदीर के ऊपर डाल देना, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो इनको खुद खुद खिला देता, तो हम क्यों खिलाएं फिर? इसी तरह अल्लाह चाहता तो मुझे हिदायत दे देता, अल्लाह चाहता तो मैं कुरान पढ़ लेती। कोई लोग कहते हैं नहीं जी आप आए जी कुरान सीखे, कहते नहीं जी आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह चाहेगा तो फिर बाद में पढ़ लें, खुद क्या इरादा है ही नहीं, अल्लाह क्यों आपको, आपको क्यों अल्लाह ताला इसके अंदर जबरदस्ती लेकर आए अगर आपका इरादा नहीं है तो? अल्लाह ताला क्यों आपके लिए ये दरवाजा खोले अगर आपको ही इसकी तलब नहीं है, शौक नहीं है, तड़प नहीं है? तो इससे पता चला कि कभी भी नेकी के काम में तकदीर के ऊपर मत डाला करें, अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा कर देता, खुद ही कर देता, उनका खुद ही काम हो जाता, हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो दूसरा हमें ये पता चलता है कि इंसानियत के लिए काम करना, खिदमते खल्क करना कितनी बड़ी नेकी का काम है, और जैसे जैसे आप आखिर के पारों की तरफ जाते हैं इतना ज्यादा खाना खिलाने पे तो इतना जोर दिया गया आखिर के पारों में, मोहताजों मिस्कीनों को, किसी को भी आप खाना खिलाएं, हम अक्सर उनको खाना खिलाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या जो हमसे ज्यादा बढ़ के मालदार हो, उनको खाना खिलाने में तो आगे आगे बढ़ बढ़ के करते हैं, लेकिन जब अब मिसकीनों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, तो फिर हम कहते हैं छोड़ो इनको क्या। तो इंसान खुद गर्ज ना हो, खुद गर्ज इंसान अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बल्कि अपने अपने बच्चों के अलावा भी औरों का सोचे, दूसरों की तकलीफ को समझे, भूख को समझे, उनकी जरूरत को पूरी करे और उनके ऊपर खर्च करे। तो वो इसको हमाकत कहते हैं, ये हमाकत नहीं है, वो इसको गुमराही कहते हैं, ये गुमराही नहीं है, बल्कि वो खुद गुमराह है जो ये ऐसा कहते हैं। इसलिए इससे हमें दर्स मिला कि इंसानियत का दर्द इंसान के अंदर होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी ये काम करने चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, हर बंदा इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझे, इंसानियत का दर्द रखे और उस सिर्फ दर्द रख के सिर्फ आ ना भर ले कि ओ बेचारे हाय इनके साथ ये हो गया, नहीं आगे बढ़ के अपने हाथ को भी खर्च करने के लिए खोलें। और ऐसे वक्तों में कोई एक्सक्यूजेस ना दे, बचने की कोशिशें ना करें, बल्कि इसमें खुश हुआ करें कि ये अल्लाह शुक्र है तूने मुझे मौका दे दिया या अल्लाह, और तूने मुझे देने वाला बनाया, मैं लेने वालों में से भी तो हो सकती थी कि उस मिसकीन जी की जगह मैं होती, इस मोहताज की जगह मैं होती, इस यतीम की जगह मैं होती। तो अगर अल्लाह ताला ने ऊपर वाला हाथ दे ही दिया तो उसमें से ही खर्च करना है जो अल्लाह ताला ने दिया, ये याद करा दिया गया यहाँ पे। देखिए अगर आप अपने में से खर्च कर रहे होते तो फिर तो बात समझ भी आती, आप शायद सोचते कि जी मैं क्यों अपना दूं, नहीं आपका तो है ही नहीं है, यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया आपका नहीं है जी, आपने सिर्फ इसमें से देना है। तो अब मुंह ना बनाया करें, अगर कोई मस्जिद आपसे चंदा मांग ले या कोई मोहताज फकीर आगे हाथ बढ़ा दे, तो अल्लाह का है उसमें से दिया है बस, और उसके बाद कोई फख्र करने की भी जरूरत नहीं, मैंने दे दिया जी, मैंने इतना दिया, मैंने वहां पे इतना डोनेशन दे दिया, मैंने इतना खर्च कर दिया। देखिए वो आपने आपने क्या खर्च किया, आपका तो था ही नहीं। इसी से हमारी मेंटेलिटी पता चलती है ना, किसी ने कितनी प्यारी बात, उन्होंने कहा कि ये आपका घर है, उन्होंने कहा नहीं मेरा घर नहीं है, ये तो अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, देखिए ना कि सोच की बात है ना, किसी के जहन के अंदर कितनी ये बात पुख्ता हो जाए कि ये मेरा नहीं है ये अल्लाह का है, तब ना फखर आएगा, ना गरूर आएगा, ना देने में मसला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी फिर। वयकुलून मता हाजल वाद, वो कहते हैं कब आएगा जी वादे का वक्त, रोज की धमकियां सुन सुन के हम तो थक गए हैं, ले आए ना कयामत इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो। देखिए वो तो इस तरह चैलेंज करते रहते थे, इसी तरह की बातें करते रहते थे, खुद सोचे अगर अल्लाह ताला उसी वक्त ले आता कयामत तो हम जैसे तो आ ही ना सकते फिर, और ना ही हमारे बच्चे और ना ही हमारी नस्लें और ना ही हमारे आबाओ अजदाद, 1400 साल पहले ही दुनिया खत्म हो चुकी होती। लेकिन ये अल्लाह ताला का कितना सब्र है ना, कितनी वो मोहलत देता है, उसने एक टाइम इसीलिए रखा हुआ ना कि सब ने आना है और अपने अपने टाइम पे अपना अपना पार्ट प्ले करके इस दुनिया से जाना है, उस वजह से अभी तक कयामत नहीं आई। वरना ऐसा नहीं है कि कोई ये भारी है अल्लाह के लिए लाना, नाउज बिल्ला, ऐसा नहीं है कि अभी तैयारी नहीं हुई इसलिए, ऐसा नहीं है कि कोई अभी प्रोग्राम नहीं बना इसकी प्लानिंग नहीं हुई इसलिए, नहीं ये सब नहीं है, बल्कि इसलिए कि हर एक का ये हक है, जितनी अल्लाह ताला ने रूहें बनाई हैं उन्होंने आके अपना टाइम इस दुनिया में गुजार के जाना है, अपने अपने अमल करके जाने हैं, जिसकी बेस पे उनका कयामत में हिसाब होना। इस तरह हर एक के कहने के ऊपर कयामत आने लगी होती तो आज से 1400 साल पहले ही आ चुकी होती, तो वो तो मजाक उड़ाने के लिए कहते थे ना, अब भाई कब आएगी जी। तो इसको हम मजाक ना बनाए कभी भी, हम भी ना इसको मजाक बनाए, ना जन्नत के लतीफे बनाए, ना जहन्नुम के, ना हूरों के, ये ना बहुत सीरियस मामला है, ये उन लोगों को काफरों का काम था इस्तेहजा करना इस चीज के ऊपर। अगर हमने भी यही काम पकड़ लिए कि बस हमें लतीफे आते हैं ऐसी चीजों के, गर्मी हो जाए तो जहन्नुम के लतीफे बना लेते हैं जी, जहन्नुम में बैठा हुआ वो आदमी कहने लगा ऐसे है तो उसने कहा ये, तो इस तरह की बातें कितनी अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी निशानियां हैं, जहन्नुम जन्नत कयामत ये भी अल्लाह की निशानियां हैं, ये मजाक बनाने के लिए नहीं है। मा यंजुरुना इल्ला सैहतन वाहिदतन, नहीं वो इंतजार कर रहे मगर एक एक सैहा का, एक चीख का, एक सूर फूंकने का, ताखुदुहुम वहुम यखसिमून, वो आ पकड़ेगा इनको और ये उस वक्त झगड़ रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट्स में होंगे, यानी जिस चीज का ये आज बड़ी जुर्रत करते हैं और इसका मुतालबा करते हैं, वो तो जब आनी है ना तो एक लम्हा भी नहीं लगना, अल्लाह ताला का बस कौन नोन है, इनको बस इसी चीज का इंतजार है, ये बस इसका इंतजार कर रहे हैं कि खत्म हो जाए, सारी दुनिया खत्म हो जाए। और जब ये वक्त आएगा ना तो फिर बस एक लहजा होगा, एक लम्हा होगा, और वो झगड़ रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट, इससे पता चलता है कि कयामत के नजदीक लोगों में झगड़े होंगे, बहुत लड़ाइयां होंगी कयामत के नजदीक, घर घर में लड़ाइयां, कौमों में लड़ाइयां, लोगों में, मतलब हर जगह झगड़े, फसाद, लड़ाई ये होगी। और कयामत जब आएगी उस वक्त भी लोग झगड़ने में ही लगे होंगे। तो एक सईहा का माना क्या है, एक यानी एक सूर फूंका जाएगा, एक चीख होगी, वो सूर भी क्या है, एक चीख की माने एक चीज समझ ले, एक ऐसी बुलंद आवाज कि जिससे सब चीजें तहस नहस हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। अने इससे अंदाजा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी अचानक आएगी कयामत, इतनी अचानक होगी कि एक बंदा अपना कपड़ा फैलाए हुए होगा, खरीदो फरोख्त के लिए जैसे कपड़ा फैलाते हैं हम दुकानदार दिखाने के लिए, यानी इतना नॉर्मल रूटीन चल रही है, इसका मतलब एक दुकानें खुली हुई है, बाजार खुले में, समझ रहे हैं, इससे आप ये समझ लें, बाजार बंद कब होते हैं, जब कोई अल्लाह माफ करे कोई ऐसा मतलब वॉर है या कोई ऐसा वो डिजास्टर है, कोई ऐसा तूफान आ रहा है, तो कह देते हैं कल को सारी चीजें बंद है, ऑफिस बंद, ये सब चीज बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कोई इंडिकेशन नहीं है इसका, बाजार भी खुले में है, उसने कपड़ा भी फैलाया हुआ है, कोई वो डर वर नहीं रहा क्योंकि कुछ ऐसा एमरजेंसी कोई नाफिज नहीं हुई भी। अच्छा क्या है, दो लोग खरीदो फरोख्त के लिए कपड़ा फैलाए हुए होंगे, उन्होंने खरीदो फरोख्त मुकम्मल करके कपड़ा भी लपेटा नहीं होगा कि कयामत आ जाएगी, यानी इतनी अचानक आएगी। एक शख्स अपनी ऊंटनी का दूध धो कर जा रहा होगा, अभी इसने वो दूध पिया भी नहीं होगा कि कयामत आ जाएगी, एक शख्स अपना हौज ठीक कर रहा होगा, उसने अपने हौज से पानी पिया भी नहीं होगा, कयामत आ जाएगी। एक शख्स, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है, एक शख्स अपना लुकमा उठा के अब अपने मुंह तक ला रहा है, मुंह में रखेगा, और अभी वो उसको खाया नहीं होगा, उसने खाने से पहले कयामत आ जाएगी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। यानी मामूलाते जिंदगी चल रहे हैं, खरीदो फरोख्त भी हो रही है, इसका मतलब तजारत भी हो रही है, ऑफिस भी खुले हुए, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लोग बहसें भी कर रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, दुनियावी अमूर में यानी मशगूल हैं, अचानक इतनी कयामत आएगी कि लोग बिल्कुल गफलत में होंगे, ये मतलब है। और जो चीज गफलत में होते हुए आती है ना वो बड़ी सख्त होती है, जैसे अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, जलजला जब आता है तो क्योंकि इसकी कोई इंडिकेशन नहीं होती, देखा है लोग किस तरह हवास बाख्ता हो जाते हैं, उसको कहते हैं जी कयामत सुगरा आ गई, उनके बड़े तो कयामत गुजर गई, क्यों कहते हैं, इसलिए कि वो औसान खता हो जाते हैं। तो फिर इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता, और फरमाया फला यस्तुतीउना तौसियतन, और वो वसीयत भी नहीं कर सकेंगे, या वला इला अहलिहिम यरजिउन, और ना अपने घर वालों की तरफ पलट सकेंगे, अपने घर वालों की तरफ जा भी नहीं सकेगा, नहीं जो जहां होगा वहीं पे फौत हो जाएगा, ये भी नहीं कि मैं घर ही पहुंच जाऊंगा, एक दफा आखिरी दफा अपने घर वालों को तो देख लूं मरने से पहले, ये जो मेरे ऊपर कयामत आ गई है इससे पहले अपने घर वालों को तो कोई पता ले लूं वो किस हाल में है, घर वालों का फौरन ख्याल आता है ना, उन तक पहुंच भी नहीं सकेंगे, वसीयत भी नहीं कोई कर सकेगा, क्योंकि वसीयत जो होती है ना वो जुबानी भी की जा सकती है, जुबानी किसी को कह दे कि मेरे पीछे से सुनो ये कर लेना, इतनी जल्दी मर जाएंगे, यानी पता चलता है जिस हाल में होंगे उसी हाल में खत्म हो जाएंगे, जो बाजार में वो बाजार में मर जाएगा, जो घर में वो घर में मर जाएगा, जो ऑफिस में मर जाएगा, किसी को मिलने का भी टाइम नहीं होगा, उसके पास ही पहुंच जाओ। हाय अपने प्यारे को ही पकड़ लूं, हाय माँ कहे मैं अपने बच्चे को ही पकड़ लूं। और वसीयत तो वैसे ही वसीयत अपनी हमेशा करके ही रखनी चाहिए। अगर आपके जहन में किसी चीज की भी वसीयत का ख्याल है ना कि मेरे बाद, जरूरी नहीं वसीयत माल में ही हो, आप सोचते हैं ना मेरे बाद ये मेरी चीज, मसलन मेरे मेरे कोई मिसाल के तौर पे कोई ऐसा करे, या मेरे ऊपर ये कर्ज है, या मैंने इतने रोजे मेरे रहते हैं, अब मैं इसकी वसीयत कर जाऊं, या फलां भी है जिसका मैंने इतना देना है, फलां की ये चीज मेरे पास पड़ी हुई अमानत, ये सारी वसीयतें हैं। या अपनी औलाद को कि मेरे बच्चों मेरे बात नेक रहना, तुम ईमान पे रह चलते रहना, तुम ऐसे करना, ये खर्च करते रहना, ये सब वसीयतें हैं। तो वसीयत दो रातें भी नहीं ऐसी गुजरनी चाहिए कि इंसान ने वसीयत करनी है और वो आराम से बैठा हुआ, नहीं। कोई वसीयत की चीज अगर आपके पास है या कोई नसीहत है, वो उसको कर जाए इंसान। किसी के बारे में है, मसलन फलां के साथ अच्छा करना, कोई और ऐसी बात आपने कहनी है तो वो कह दे, उसके लिए वेट ना करें। ठीक है, क्योंकि जब ये सयहा फूका जाएगा ना, तो फिर कोई वक्त नहीं किसी को मिलेगा। और जब इंसान की मौत का भी वक्त आना है, तो वो भी ऐसा है कि उसी वक्त ही आ जानी है, कोई उसके अंदर मौका नहीं मिलता इंसान को बाज दफा कि वो कोई वसीयतें करे। इसलिए इसका मतलब मौत से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए ना, कयामत से पहले जाने की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए कि जब कयामत आ गई, फिर तो क्या तैयारी कोई करेगा, फिर तो किसी का तैयारी करना भी काम नहीं आएगा। ला यनफाउ नफ्सन ईमानु लम तकुन आमनत मिन कबल औ कसबत फी ईमानिहा खैर। जब लोग कयामत की अलामत भी देख लेंगे, सूरज का मगरिब से तुलू हो ना, तब भी सब लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन वो वक्त ईमान लाने का नहीं होगा, फिर ईमान फायदा नहीं देगा, और ना ही कोई नेकी फायदा देगी। कोई कहे अब मैं कोई नेकी कर लेता हूँ, नहीं, अब कुफत खत्म हो गया टाइम, अब कोई वसीयत कर दूं, अब कोई ये कर दूं, वो सब टाइम खत्म। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि वो कितना हौलनाक वक्त होगा, यानी आप देखें सारी निशानियां आपको दिखा के अब आपको ले जाया जा रहा है हशर के मैदान की तरफ, कि चलो अब जिंदगी तो तुमने गुजार ली, दुनिया में हमने तुम्हें काफी टाइम दे दिया, मोहलत दे दी, फौरन तुम्हें पकड़ नहीं लिया, फौरन तुम्हें खत्म नहीं कर दिया, तुमने हमें माना नहीं माना, तुमने नेकी की नहीं की, अब तो वापसी का वक्त है, अब चलो रिजल्ट का टाइम है, अब अमल का वक्त खत्म हो गया, हिसाब का वक्त शुरू हो गया। तुम्हें दुनिया में निशानियां भी दिखा दी गई, तुम क्या क्या कर सकते थे, क्या करा क्या नहीं किया, अब जब सूर फूंका जाएगा या मौत आ जाएगी, तो अब तो ये टाइम है कि चलो देखते हैं अब तुम करके क्या आए हो। तुम्हें तो खलीफा बनाया था ना जमीन में, अल्लाह ताला ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के इस जमीन पे भेजा था ना, तो क्या करके आए हो, अब जरा कच्चे छठे अपने दिखाओ। ये अब वो टाइम है, अब वो दिखाया जा रहा है। निशानियां तो देख ली तुमने काफी, निशानियों से सबक लिया नहीं लिया वो अब पता चलेगा। मनुफ खफ सूर, और फूंक दिया जाएगा सूर में। सूर क्या है, ये एक सींग की तरह की शक्ल की कोई चीज है जिसमें फूंक मारी जाएगी, और कौन फूंक मारेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम, ये उनकी फूंक होगी। अब ये एक पहला नुस्खा है, एक दूसरा है, बाज जगह पे तीसरे नुस्खे की भी बात आती है, बाज दफा तो तीन नुस्खों की बात आती है, बाज जगह पे दो। पहली दफा सूर फूंकने का जिक्र ये है जो आयत नंबर 49 में, जो सिर्फ एक हौलनाक आवाज होगी। तो क्या ये इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आवाज आ जाए, इतना जो पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा, तो उसका इंतजार कर रहे हैं जो अचानक फिर आके पकड़ लेगी, यानी उससे कयामत वाकई हो जाएगी। और दूसरा सूर फूंका जाएगा जिसका अब 51 में जिक्र आ रहा है आयत में, कि फूंका जाएगा सब मुर्दे जिंदा होके अपने रब के हजूर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो सूरों की बात आ गई। एक और जगह पे हमें तीन सूरों की भी बात पता चलती है, और उसके अंदर क्या है कि एक सूर फूंका जाएगा जो कि वहशत का और बहुत ज्यादा परेशानी का और इतना ज्यादा घबराहट को होगा, और दूसरा उसके बाद सारे उनको मौत आ जाएगी जितने भी थे, और तीसरा जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूलल्लाह सूर क्या है? आपने फरमाया एक नरसिंगा सा है। मैंने कहा वो कैसा है? आपने फरमाया बहुत ही बड़ा है, वल्लाही उसके दायरे की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर, इनमें से तीन नुफ्के फूके जाएंगे। और इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा, वो फूंक देंगे जिससे आसमान और जमीन की सारी मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं सारी मखलूक घबरा उठेगी, चाहे वो चरिंद हैं, परिंद हैं, जानवर हैं, जिन्नात हैं, कोई भी, सब घबरा जाएंगे, मगर जिसको अल्लाह चाहे। ये सूर देर तक बराबर फूंका जाएगा, चाहे वो समंदर की तहों की मछलियां क्यों ना हो। तो और उसकी आवाज इतनी बुलंद होगी, इतनी जोरदार उसकी चीख होगी कि फिर पहाड़ फिर बादलों की तरह चलने लगेंगे, इतनी उस आवाज से ही सिर्फ सोचे। और जल्लाह फिर आएगा, फिर वो अब पहाड़ भी रेत रेत हो जाएंगे, जमीन में भूचाल आ जाएगा, थरथराने लगेगी जैसे कोई कश्ती किसी तूफान में फंसी हुई हो, या उस हंडी की तरह जो अर्श पे लटकी हुई हो, किसी छत पे लटकी हुई और हवाएं उसको हिला रही होती। अल्लाह हु अकबर, वो दिन बहुत मुश्किल दिन होगा। तो फिर फरमाया व नुफ़ खफ सूर, फिर फूंक दिया जाएगा सूर में। अब ये वो है जो जिंदा करने का, चाहे आप उसको दूसरा कह लें या तीसरा कह लें, फाइजा। तो उसी वक्त हम मिनल अजदासी ला रब्बिहिम यंसिलून, वो कब्रों से उठेंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे, दौड़ के चलेंगे, तेज तेज चलेंगे। ऐसे नहीं कोई कहा मैंने नहीं जाना, आए हाल दुहाई मचा के उधर ही रोना शुरू कर दे, लेट जाए उधर ही और लोग उसको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। जब इंसान नहीं जाना चाहता तो फिर तो ऐसे ही करता है ना, लेकिन खुद ही चलेंगे, खुद ही दौड़ेंगे। अल्लाह हु अकबर। और हदस कहते हैं उस कब्र को जिसका नामो निशान भी मिट चुका हो, इतनी पुरानी हो गई, यानी बताया जा रहा है कि वो जिनको इंसान समझता भी नहीं है, बुलडोजर फेर फेर के, इतनी पुरानी कई हो जाती है ना जगह, कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं, बुलडोजर फेर के उसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई, या इतनी पुरानी हो चुकी है। देखे आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से पता नहीं कितनी कब्रें कहाँ कहाँ पे हो, हमें क्या पता। अब वो मिट चुकी हैं, उनका पता भी नहीं है, वहां से भी मुर्दे निकल रहे हैं और अपने रब की तरफ दौड़ रहे हैं। इतनी पुरानी कब्रों से भी अगर निकलेंगे तो नई कब्रों में से तो वैसे ही निकलेंगे। तो और कोई ये नहीं कहेगा मैंने नहीं जाना है इस दुनिया में। तो आज अल्लाह की तरफ बुलाएं तो लोग कहते नहीं जी मैंने नहीं, वो इतने बहाने, ऐसे मेरा वक्त नहीं है, फलां है, बच्चे छोटे, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे लगता है दुनिया के सबसे ज्यादा मसरूफ यही लोग हैं, इनको आज अल्लाह की तरफ चलने का वक्त नहीं है। मगर उस वक्त कोई कहेगा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं, अभी मैंने कोई और काम करना है, या मैंने अभी कहीं जाना है, या मैं बस नहीं जाना चाहती। उस दिन तो अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा, इला रब्बी का यौमा इज़िन मुस्तकर, अल्लाह ही की तरफ उस दिन करारगा है। इंसान कहेगा भी ना इनल मफर, किधर भागने की जगह, मैं भाग जाऊं, भागने की जगह ही नहीं कोई, जाना उस तरफ ही है। एक डांट होगी, एक पुकार होगी और सब भागेंगे, सब उठ के चलेंगे। अब ये कितनी देर के बाद होगा कि दोबारा सूर फूंका जाएगा जिससे सारे जिंदा हों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बार सूर फूंकने के दरमियान 40 का वक्फा होगा, यानी एक वो जिसपे मरे थे और एक जो जिंदा उठे उसमें 40 का वक्फा होगा। ये अबू हुरैरा ने रिवायत की। तो लोगों ने कहा है अबू हुरैरा 40 दिन का या 40 महीने का? उन्होंने फरमाया मुझे नहीं पता, वो यानी रावी को भूल गया, उन्होंने खुद ही नहीं सोच लिया, मैं अपनी तरफ से ही बता देता हूँ। लोगों ने कहा 40 साल का? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं कुछ कह सकता। हाँ फिर आगे उनको जो हदीस याद थी, फरमाया अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजिल फरमाएगा जिससे लोग इस तरह उगेंगे जिस तरह सब्जा उगता है, और एक हड्डी के सिवा इंसान के जिस्म की हर चीज गल जाएगी और वो दुम की हड्डी का सिरा है। अब आज देखें बताते हैं ना डीएनए इसमें, सुभान अल्लाह, उस वक्त किसको पता था कि दुम की हड्डी के सिरे के अंदर इंसान की सारी हिस्ट्री होती है। कयामत के दिन फरमाया, ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, कयामत के दिन इसी से इंसान को दोबारा बनाया जाएगा। कहते हैं ये डीएनए के अंदर ना उसकी सारी सब चीज, उसकी इसकी शक्लो सूरत अदा ततवार कद काड हर चीज उसकी इसके अंदर, जैसे उसकी चिप है समझ लें, उसके अंदर उसकी सारी मेमोरी है। उससे उगेंगे। सुभान अल्लाह, क्या समझ नहीं आती कि ये कुरान हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक, आपकी नबुवत हक, अल्लाह ताला की जात हक, ये सब हक है, ये सच है। किसको पता था दुम की हड्डी के अंदर से इंसान उगेगा? आज भी वो कहते हैं अगर इंसान को बनाना हो तो उसके डीएनए से बन सकता है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह ताला उस दिन को हमारे लिए आसान फरमाना, उस दिन को हमारे लिए आसान फरमाना जिस दिन लोग निकल के दौड़ेंगे। सूरह जुमर में आता है ना, सूर में फूंका जाएगा पस आसमान और जमीन में जो भी मखलूक है, सब लोग बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके जिसको अल्लाह चाहे। फिर दोबारा फूंका जाएगा तो अचानक सब लोग फौरन से जिंदा होके होश में आगे खड़े हो जाएंगे। ये नहीं कि जैसे हमारा अलार्म बजता रहता है हम उठते ही नहीं, उसको बंद करके सो जाते हैं, फिर से उस तरह से नहीं कोई होगा कि भाई जब सूर फूंका जाए तो उसके बाद हम फिर सो गए कि जब खत्म होगा तो अब हमसे नहीं उठा जाता, हम तो बड़े थके पड़े हैं। नहीं, तो हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज जमीन और आसमान की तमाम मखलूक मर जाए। याद रखे मैं क्या कह रही हूं, जमीन और आसमान की तमाम मखलूक, चाहे वो फरिश्ते ही क्यों ना हो, चाहे वो फरिश्ते क्यों ना हो, हत्ता के जितने जिब्राईल मीकाईल इसराफील अलैहिस्सलाम भी जो सूर फूंकने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कालू या वैलना मन बअसना मिन मरकदिना, उस दिन वो कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, हाय हमें किसने खड़ा कर दिया हमारी सोने की जगहों से। अब जब जिंदा हुए हैं ना तो अब कह रहे हैं कि किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से जगा दिया। ये क्यों कहेंगे? इसलिए कि वो जो इतना वहशत का वक्त होगा ना, जिस वक्त दूध पीते बच्चों को माएं भूल जाएंगी, हामिला का हमल गिर जाएगा, कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, इतनी घबराहट होगी, इतनी घबराहट होगी उस वक्त के अंदर, इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि उनको जो कब्र है ना वो ऐसे लगेगा कि वो तो हमारी सोने की जगह थी, वो तो आराम की जगह थी। जैसे इंसान के ऊपर, इंसान के तो अपने सर में दर्द हो रहा है, लेकिन उसी वक्त पता चले कि कोई अल्लाह ताला माफ करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो उसको सर का दर्द तो भूल ही जाएगा, उसके ऊपर किसी प्यारे का वो जो बात है वो इतनी हावी होगी उसको याद ही नहीं लगा मेरे सर में दर्द है। तो ये इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि वो तो उसको कोई लग ही नहीं रही, वो कहता वो तो मैं वहां पे सो रहा था सोने की जगह। इतना इंसान की परेशानी का आलम होगा, इतनी बड़ी मुसीबत होगी। तो कहता है हाय मेरी मुसीबत, हाय हमारी हलाकत। अल्लाह हु अकबर। तो इससे ये मतलब नहीं कि वो वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था, कब्र का अजाब ही नहीं हो रहा था उनको, और वहां पे वो बड़े मजे में लेटे हुए थे। अल्लाह हु अकबर। हाजा मा वादा रहमान व सदक अल मुरसलून। अब ये वादे का वक्त, वादा जो किया गया था रहमान ने जो किया था और सच कहा था रसूलों ने, ये है वो। अब ये कौन कह रहा है? अब ये कह रहे हैं या तो ईमान वाले कह रहे हैं, या फरिश्ते कह रहे हैं, या अल्लाह ताला फरमा रहा है, या ईमान वाले दिल में सोच रहे हैं। लोग दिल में भी सोच सकते हैं, अहले इल्म भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे? अब देखो ना, अब जब सामने देख रहे हैं तो कह रहे हैं भाई यही तो है, यही है वो जिसका वादा रहमान ने किया था और सच कहा था रसूलों ने, वो सारी बातें सच्ची थी, वाकई ये तो वो दिन आ गया वो दिन। अब देखे ना, अब आप पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ, जब उस दिन देखेंगे उसको तो क्या मुंह से निकलेगा नहीं कि ओ यही तो वो है हमने सूरह यासीन में इसका पढ़ा था, यही तो वो है हमने कुरान में इसका पढ़ा था, यही तो वो है जिसका हम क्लास में पढ़ते थे, यही तो वो है जिसका हमने दर्स में सुना था, यही तो वो कयामत है, वाकई वो तो आ गई। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त उनको एकदम यानी इस चीज के अंदर उनको ये नहीं होगा कि समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या वक्त है, समझ ही नहीं आ रही उनको क्या, नहीं उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उस वक्त सारी इंसान की जो कुव्वत है ना, देखने की, सुनने की, समझ की, बहुत तेज हो जाएंगी, बहुत तेज। और वो कहेगा हाँ ये इसका रहमान ने वादा किया था। रहमान क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि उस दिन अल्लाह ताला की जो 99, आपको पता ना अल्लाह ताला की रहमत की 99 हिस्से उसने अपने पास रखे हैं, एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में उतारा है। 100 हिस्से किए थे उसने अपनी रहमत के, एक हिस्सा दुनिया में उतरा है, 99 उसके पास है। कयामत के दिन ये जो एक हिस्सा है वो भी अल्लाह ताला के पास होगा, 100 रहमत के हिस्से मुकम्मल हो गए। रहमान, रहमान ने जिसका वादा किया था। देखो अब यकीन आ गया, अब तो सबको यकीन आ जाएगा, वो जो मजाक उड़ाते थे उनको भी यकीन आ जाएगा, सबके सामने होगा। और सदकल मुरसलून, और रसूलों ने सच कहा। अल्लाहु अकबर। एक और बात है कि घबराहट की वजह से भी वो कहेंगे कि मंबासना में मरकदीना, जैसे इंसान एकदम कहीं होश आता है या गहरी नींद से एकदम अचानक उठता तो एकदम से परेशान हो गया, कहता ना किधर हूं मैं, क्या हो गया, ये किसने क्या कर दिया, कहीं बेहोश हुआ भाई अस्पताल में ले जाएगा, एकदम उसको अचानक होश आती तो कहता मैं किधर हूं। तो फिर इसलिए भी वो कह सकता है या रहम फरमाना। तो उस दिन सबकी आंखें खुल जानी है, ये जो आज की गफलतें हैं ये सब दूर हो जाएंगी, ये जो आज इंसान कहता है मेरे पास टाइम नहीं तैयारी करने का आखरत की, उस दिन इंसान खुद कहेगा वादा किया था ना रहमान ने, उस सच कहा था रसूलों ने, ये जो सारी बातें आज हमें बड़ी दूर नजर आती हैं और ऐसा लगता है जैसे कभी होना ही नहीं, दुनिया तो ऐसे ही चलती जा रही है, सब चीजें एकदम रियलिटी बन के जब सामने खड़ी हो जाएंगी। और इसमें सिर्फ इतनी सी देर है कि इधर इंसान की आंखें बंद हुई और उधर क़यामत में जब खुलेंगी तो वो ये कहेगा, इतनी क्विक है, चाहे वो असल क़यामत हो चाहे ये दुनिया में मौत का आना है, ये मौत भी आ जाएगी तो उसके बाद तो उठेगा तो क़यामत के दिन ही ना, उससे पहले तो कब्र है, कब्र में जो थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है, लेकिन असल उठना क़यामत के दिन जब इस सारी जिस्म के साथ इंसान उठेगा, तब उसको याद आएगा ना कि वादा तो किया था अल्लाह ताला ने, वो तो पूरा हो गया, जिस चीज को मैं ना समझता था कि ये सही होगी वो सही होगा, और रसूल सच कहते थे तैयारी कर लो एक दिन आएगा, ये करीब ही है, आ गया वो, जिन चीजों से मना किया था रोका था, गफलत में मत पड़ो, जिंदगी को जाया ना करो, वाकई वो सब चीजें सही हो गई, सब कुछ याद आ जाएगा। इंसान अपनी तैयारी करके रखे, इसको दूर ना समझे, इसलिए कि अगर मौत आ गई तो अमल का वक्त तो खत्म हो गया ना, अपने जो 5 फराइज हैं हमारे ऊपर, तौहीद, नमाज, रोजा, जकात, हज, इनकी पहले, सबसे पहले इनकी फिक्र करें, तौहीद पे कायम है या नहीं, मेरा अकीदा सही है कि नहीं, अकीदे को सीखें, अकीदा सही होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई जन्नत नहीं है, इसके बगैर नमाजें जाया, रोजे जाया, हज जाया, अगर अकीदे में शिर्क आ गया, फिर नमाज की फिक्र करें, नमाजें मेरी पूरी हों, नमाजें तो नहीं मेरी कहीं मिस हो रही, कहीं मेरी नमाजों में तो नहीं इतनी देर लगती, कहीं मैं नमाजों को डिले तो नहीं करती, कजा तो नहीं करती रहती इस चीज के पीछे, उसके पीछे, जॉब के पीछे, फलां भागने के पीछे, ऐसे मेरी नमाजों का क्या हाल है, मेरे रोजे कितने हैं जो मेरे पर अभी तक रहते हैं, मैंने कभी प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ दिए, कभी उसके बाद छोड़े, कभी मेरे पीरियड्स की वजह से छूट गए, वो आज तक रखे ही नहीं, कभी रखने का सोचा ही नहीं, आज सालों साल ऐसे ही गुजरते गए। अब उनका क्या करना है, मैं उनका तो कुछ सोच के जाऊं? मेरी जकात, जकात क्या मेरी अदा होती रही है? जब नहीं कुरान पढ़ते थे तब तब भी तो जकात फर्ज थी, जब से मेरे पास इतना सरमाया इतना जेवर है तब से जकात अदा हुई है कि नहीं हुई? मेरा हज, मेरे पास इस्तात है, लेकिन कहीं मैं टालती तो नहीं जा रही इस वजह से कि अगले साल कर लेंगे? अभी गर्मी का हज है, अभी सर्दी का हज है, अभी इसका है, अभी वो, अभी बच्चियां बड़ी हैं, अभी इनकी शादियां करनी है, अभी ये फलां चीज है, अभी ये फलां चीज है, इस तरह कर करके मैं टाल तो नहीं रही? अपने पांच फराइज को सबसे पहले देखें, उसके बाद फिर आगे चीजें देखें, किस जगह पे खड़ी मी हूं, कुछ खलासी का चांस है कि नहीं? आप खुद देखें ना, एक बंदा है जिसने इतनी तैयारी की हो, इतनी तैयारी की हो कि उसको पता है कि मैंने, मेरी कोई पोजीशन तो आ ही जाएगी, मतलब पास तो हो ही जाऊंगा, मुझे लगता है शायद कोई पोजीशन भी आ जाए, वो तो थोड़ा इत्मीनान में होगा। और जिसको ये है कि पता नहीं पास भी होता हूं कि नहीं, उसकी परेशानी का क्या आलम होगा, उसकी हालत उस दिन क्या होगी जब ओ ये तो सारा कुछ सही हो गया, ओ ये तो सारा कुछ हक था, ओ ये तो सारा कुछ सच था, जब जहन्नुम आ रही है उधर से जन्नत लाई जा रही है, उससे इंसान खड़ा हुआ है और उसका आमालनामा सामने है, मीजान कायम की जा रही है, अभी नेकियां और बदियां तुलनी है, उस वक्त क्या हाल होगा? हाजा मा वादा रहमान, ये वाकई वो हो गया जिसका वादा रहमान ने किया। खुल गई ना आंखें, जो आज तक नहीं खुली थी, सोए पड़े रहे दुनिया में, वो आंखें खुल गईं, कितनी अच्छी तरह खुल गईं। और अब तो कह रहे हैं रसूलों ने भी सच कहा भाई, लेकिन अब कहने का क्या फायदा? इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फैदा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, वो सिर्फ एक चीख ही होगी और फौरन से सब के सब जमा हो जाएंगे, हाजिर किए जाने वाले होंगे, यानी कोई पीछे नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं सिर्फ जिन और इंसान होंगे वहां पे? कोई फरिश्ता पीछे नहीं है, कोई जिन, कोई इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेके, और उनसे पहले जिन तो उससे पहले की मखलूक है, आदम अलैहिस्सलाम तो बाद में पैदा हुए, वो पहले से जितने जिन्नात थे और जितने इंसान थे और फिर उसके अलावा भी जितनी मखलूक है, चाहे कोई जानवर है, चरिंद है, परिंद है, सब, वाइजल वहूश हुशिरत, जानवरों को भी खड़ा कर दिया जाएगा, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी वला तायरिन यतीरु बि जनाही इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फरतना फिल किताबी मिन शै थुम्मा इला रब्बिहिम यहशरून, सब के सब अपने रब के तरफ हशर किए जाएंगे, सब उम्मतें हैं, तायरिन तो उसको परिंदों को भी कह दिया गया कि परिंदे भी, वो तक भी उस दिन खड़े किए जाएंगे, सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। तो चाहे कोई जाया शुदा बच्चा, बच्चा बन चुका था अब उसके बाद एंड में आके बिल्कुल जाया हो गया, या पैदा होते ही खत्म हो गया, उससे लेके बूढ़े तक सबको जिंदा किया जाएगा, और सब जो समंदर में गर्क हुआ, जिसका गोश्त मछलियां खा गई, उसकी कोई चीज बाकी नहीं रही, जिसको आग ने बिल्कुल जला के खाक कर दिया, जो वो सीधा हड्डियां बन गया और उसकी हड्डियां तक भी चूरा चूरा हो गई, और इतनी चूरा चूरा हो गई कि जमीन में उसकी मिट्टी के जर्रे मिल गए, रुल गया वो जमीन के अंदर, वो तक भी खड़ा किया जाएगा। हत्ता कि जो ऊंट गुजरता है, उसने कुछ खाया, उसके साथ इसका जर्रा लग गया, फिर वो लीद करता है, फिर लोग, कुछ लोग इसके बाद वहां के क्याम करते हैं, उस लीद को जमा करके आज आग जलाते हैं, वो आग भी बुझ जाती है, फिर हवा चलती है, फिर उसकी राख को उड़ा के जमीन में बखेर देती है, फिर भी जब नुफखा फूंका जाएगा तो ये लोग खड़े हो जाएंगे, सिर्फ ऐसी कब्रों से नहीं, बल्कि वो जो आग में जल गए, जो समंदर में डूब गए, जो किसी दरिंदे ने खा लिए, वो सब भी खड़े हो जाएंगे, और इसमें जरा भी देर नहीं लगेगी, सब के सब चाहे वो एक मक्खी ही क्यों ना हो, एक मक्खी भी जिंदा होगी। हाँ, हिसाब किताब सिर्फ जिन्नो इंस का है, खड़े सब होंगे। इसीलिए तो जब वो तुराब बना दिए जाएंगे, मट्टी बना दिए जाएंगे, तो काफिर कहेगा या लैतनी कुंतु तुराबा, हाय काश मैं भी मट्टी हो जाता, काश मैं ना जिंदा रहता, काश इन जानवरों के साथ मैं भी खत्म हो जाता। तब पता चलेगा, तब रियलाइज होगा, जब ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की लगेगी, खत्म हो गई, और ये हम सब ने फेस करना है, सब ने फेस करना है। फल यौम, तो उस आज के दिन ये अनाउंसमेंट हो रही है वहां पे, इससे पहले के फैसले किए जाएं, एक अनाउंसमेंट होगी। क्या अनाउंसमेंट? फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज के दिन किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, वला तुज़ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और ना तुम बदला दिए जाओगे मगर सिर्फ उसी का जो तुम अमल करते रहे। अब फिक्र ना करो, आज जुल्म नहीं होगा। अच्छा, जुल्म ही होगा तो उसके बाद तो बड़े खुश होना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो नहीं होगा, मगर खुश कैसे हो? वो तो वो खुश हो ना जो बहुत कुछ करके लेकर आया, तो उसको अगर ये डर हो कि भाई पता नहीं मेरी नेकी ना कहीं कम कर दी जाए, पता नहीं कोई एक नेकी शायद मेरी तो लिखी ना हो फरिश्तों ने, और पता नहीं कोई एक मेरी नेकी वहीं पे रह गई हो, कोई भूल ही ना गया हो, या मेरे फलां गुनाह का मुझे जितना बताया गया उससे ज्यादा कोई अजाब मिलना है, उसके ज्यादा सजा अब मिली मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जुल्म नहीं होगा। या किसी और ने किया मुझे पकड़ लिया जाएगा, तो ठीक है, वो तो फिर उस वो तो समझ आती है कि वो तो शुक्र करेगा कि जुल्म नहीं है, और वो तो खुश हो रहा है कि बस उसका ही बदला दिया जाएगा जो मैंने अमल किया। लेकिन वो जो के दुनिया में भी हेरा फेरियां करके इधर से उधर, उधर से इधर करके उसको पकड़वा दिया, खुद बच गए, इधर पैसे दे दिए, उधर उसको रिश्वत कर दी, उधर सिफारिश करा ली, उधर अपने कॉन्टेक्ट यूज कर लिए, उधर इसको आगे कर दिया, उधर उसको आगे कर दिया, कोई वकील कर लिया तगड़ा जो के मुकदमा लड़ लेगा, जो बच ही जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब पता है कि खुद तो गलत किया हुआ, लेकिन इसी तरह की आदतें थी उनको, वो समझते थे कि इसी तरह कयामत के अंदर भी छूट जाएंगे, तो उनका क्या हाल होगा? यहाँ पे तो कोई जुल्म नहीं है, तो जो तुमने किया उसी का बदला पाओगे, तुमसे तुम्हारा ही पूछा जाएगा, ना किसी और का, ना किसी और को तुम्हारी जगह धर लिया जाएगा। उनको तो परेशानी होगी ना जो मुजरिम होंगे, ला युगादिरु सगीरा तो मला कबीरा तो नीला आसा, वो तो अपनी किताब देख के कहेंगे इसमें तो ना छोटा ना कोई बड़ी बात कोई भी रह ही नहीं गई, ये तो सारा कुछ ही लिखा हुआ है। वो क्या करेंगे जो तैयारी नहीं करके आया, वो क्या करेगा? क्योंकि अब तो कहा जा रहा होगा कि नहीं बदला दिए जाओगे तुम, मगर वो ही जो तुमने अमल किया, वो अमल तो मैं कुछ करके ही नहीं लाई, अमल करना तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, मैं तो कहती थी अमल नहीं हमसे होता, पढ़ लेंगे चलो लेकिन अमल नहीं हमसे होता, हमने यहाँ पढ़ना ही नहीं है इसलिए कि अमल तो हमने करना ही नहीं, हमसे नहीं कुछ काम होता। अल्लाह अकबर, वो क्या करेंगे, उनकी घबराहट का क्या आलम होगा? तो उस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज जुल्म नहीं होगा, आज तुम अपना अपना बदला पाओगे, जो तुमने बोया वो ही काटोगे, जो तुम लाए हो अपने साथ उसी का भुगतना पड़ेगा। तो जिसके पास जो है वो उसको देखेगा ना कि मैं क्या लेकर आई हूं, खुद हम अपने अपने बैग चेक करें कि मेरे पास क्या है पड़ा हुआ जो मैं लेके आगे चल रही हूं, इसमें कुछ ऐसे काबिल है भी चीज के नहीं जो अल्लाह ताला के सामने पेश की जाए, जिसका कोई उम्मीद हो कि इसकी बेस पे मैं बच सकती हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी इस जिंदगी में तैयारी करें और इस जिंदगी को वेस्ट ना करें, इसको जाया होने से बचा लें, इसकी इस एक एक लम्हे को कीमती समझें, और इसमें अपनी आखिरत के लिए कुछ सामान जमा कर लें जिससे अल्लाह ताला राजी होता हो। आगे हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे इसी हशर के मैदान और इससे आगे लोगों के हालात क्या होंगे, कैसे फैसले होंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से और उस दिन के हिसाब किताब से, सख्त हिसाब किताब से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को और हमारे आबाओ अजदाद को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.